संयुक्त राष्ट्र रेडियो से प्रस्तुत है साप्ताहिक समाचार बुलेटिन। मैं हूं महबूब खान। 17 जनवरी 2020 के इस अंक में शामिल है, जलवायु संकट, गंभीर विषमताएं, खाद्य असुरक्षा कर रही हैं जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित, लीबिया में लगातार जारी लड़ाई व हिंसा ने लाखों बच्चों के जीवन को बना दिया है भयंकर व असहनीय, हेती में 10 वर्ष पहले आए भूकंप में हताहतों को किया गया याद, हेती को यूएन सहायता जारी रखने का वादा, 2019 दर्ज किया गया दूसरा सबसे ज्यादा गर्म वर्ष, होगा एक इंटरव्यू, और एक स्वस्थ विश्व बनाने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं, कहा WHO ने। हम आपको याद दिलाते चलें कि व्यापक दायरे वाली मल्टीमीडिया सामग्री के लिए आप हमारी वेबसाइट पर आना न भूलें। पता है news.un.org/hi। साथ ही अपने मोबाइल फोन पर यूएन न्यूज़ रीडर ऐप भी डाउनलोड करेंगे तो बाईं ओर विभिन्न भाषाओं की सूची में नीचे हिंदी भी नज़र आएगी। आप न्यूज़लेटर को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं जिसके ज़रिए प्रमुख समाचार आपको आसानी से हासिल होते रहेंगे। आइए अब सुनते हैं समाचार विस्तार से। जलवायु संकट, दुनिया भर में लगातार जारी गंभीर विषमताएं, खाद्य असुरक्षा के बढ़ते स्तर और कुपोषण जैसी स्थितियां बहुत से समाजों में लोगों के जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित कर रही हैं, जिनके कारण असंतोष भी बढ़ रहा है। संयुक्त राष्ट्र की विश्व आर्थिक स्थिति व संभावनाओं पर वर्ष 2020 की रिपोर्ट में ये आकलन पेश किया गया है। रिपोर्ट के लेखकों ने संकट का सामना करने के लिए ऊर्जा क्षेत्र में व्यापक बदलाव करने का आह्वान किया है। रिपोर्ट कहती है कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए दुनिया की बढ़ती ऊर्जा ज़रूरतों को नवीकरणीय या निम्न कार्बन ऊर्जा स्रोतों से पूरा करना होगा। इसके लिए ऊर्जा क्षेत्र में बड़े पैमाने पर समायोजन की आवश्यकता होगी, जो वर्तमान में वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के लगभग 3/4 हिस्से के लिए जिम्मेदार है। दक्षिण एशिया और भारत में इन आर्थिक संभावनाओं के बारे में दिल्ली में हमारी सहयोगी अंशु शर्मा ने भारत में संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख अर्थशास्त्री डॉक्टर नागेश कुमार के साथ खास बातचीत की।
जो वेस्ट रिपोर्ट जारी की गई है, क्या प्रमुख इसमें बातें कही गई?
वेस्ट रिपोर्ट में 2019 के वर्ष का आर्थिक विश्लेषण हुआ है और वो निकल के जो आता है उसके एक मेन हाईलाइट के 2019 का वर्ष जो है पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था के लिए काफी खराब वर्ष रहा। इसमें जो आर्थिक विकास की दर है वो 2.3% पे पूरे एक दशक में सबसे कम रही, मतलब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद ये सबसे खराब विकास की दर रही। और उसका कारण जो है ये कि ट्रेड वॉर्स की वजह से उसमें काफी उथल पुथल और एक अनसर्टेनिटी का माहौल आर्थिक व्यवस्था अर्थव्यवस्था में रहा। उसका असर सारे देशों पर पड़ा, लेकिन इस रिपोर्ट में एक आशा व्यक्त की गई है कि अब आने वाला वर्ष जो है 2020-21 का, उसमें विश्व अर्थव्यवस्था में भी एक थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट या सुधार की संकेत मिलेगा। और भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए भी यही विश्लेषण दिखाया गया है कि अभी आर्थिक विकास की दर जो 5% पे नीचे चली गई थी वो अब धीरे धीरे उभरनी शुरू होगी। अगले साल में हम समझते हैं कि 5.8 या 9 और या 6% तक ये विकास की दर हो सकती है। ये अगर एक विकास का ट्रेंड शुरू होता है तो उससे कई सारी चीज़ें, जैसे जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, और भारत में अगर ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव नहीं होंगे तो विश्व के लिए भी बड़ा मुश्किल होगा उनको अचीव करना, तो उसको भी एक मदद मिलेगी। अगर विकास की दर बढ़ती है तो उससे नए रोजगार के अवसर पैदा होते हैं, उससे जो गरीबी की दर है उसको गिराने में, उसको एलिमिनेट करने में आसानी होती है।
तो आपने भारत की बात की, अगर हम दक्षिण एशिया की बात करें पूरे की, तो बाकी देश और उनकी परफॉर्मेंस कैसी है और क्या आगे उम्मीद करें?
दक्षिण एशिया में भारत के जो नेबरिंग या पड़ोसी मुल्क हैं उसमें देखें तो बांग्लादेश एक इकोनॉमी है जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, और पिछले वर्ष में जिस वर्ष में सारे दुनिया के देशों में मंदी या विकास की दर गिरने का ट्रेंड था उस साल में भी बांग्लादेश ने 8% से ऊपर की ग्रोथ दिखाई, और उसका कारण ये है कि बांग्लादेश में एक स्थायी सरकार है और वो अच्छी नीतियों का पालन कर रही है, और वहाँ पर एक ये जो रेडीमेड गारमेंट्स में उन्होंने बड़ी महारत हासिल की है, और जो चीन और अमेरिका के बीच में जो व्यापार का युद्ध जो चल रहा है एक तरह से, तो उसका फायदा वो उठा पाए, क्योंकि बहुत सारे जो गारमेंट एक्सपोर्टर्स हैं वो जो चाइना से एक्सपोर्ट करते थे अब वो अपना रिलोकेट कर रहे हैं वियतनाम में या बांग्लादेश में, दूसरे ऐसे ही। बांग्लादेश ने उसका फायदा उठाया और उससे उनकी विकास की दर और तेज हुई है, और आशा है कि ये आने वाले वर्षों में भी बांग्लादेश ऐसे ही प्रगति करता रहेगा। साथ में दूसरे देश हैं, उनमें भूटान ने भी अच्छी विकास की दर रिपोर्ट की है 6% से ऊपर। वो क्लियर थिंक किंग वाली पॉलिसी है कि अपने जो नेचुरल रिसोर्स हैं, जो प्राकृतिक संपदा उनकी है, उसको हार्नेस करें और उसमें हाइड्रो पावर वो उसको उसमें निवेश कर रहे हैं भारत के साथ मिलके, और अब बांग्लादेश और नेपाल भी उस विषय उस दिशा में जा रहे हैं। बांग्लादेश भी भूटान से ये हाइड्रो पावर को इम्पोर्ट करना चाहता है, तो उनका भी आई थिंक मेरे ख्याल से विकास का जो कार्यक्रम है बड़ी तेजी से प्रगति कर रहा है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था इस समय थोड़े मुश्किल से गुजर रही है, वहाँ पर एक IMF का स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम है, तो एक ट्रांजिशन पीरियड की स्थिति है, और जैसे जैसे वो जोर पकड़ेगा स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट, तो धीरे धीरे रिसोर्सेज रिलीज होंगे एंड फिर वो सरकार उन रिसोर्सेज को स्पेंडिंग में यूज करके आर्थिक विकास की दर बढ़ा पाएगी।
संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ ने कहा है कि विश्व को लीबिया में लगातार जारी युद्ध के कारण बच्चों की भयंकर और असहनीय स्थिति को कतई स्वीकार नहीं करना चाहिए। यूनिसेफ की कार्यकारी निदेशक हेनरिएटा फोर ने शुक्रवार को जारी एक वक्तव्य में कहा कि लीबिया में कई वर्षों से जारी गृह युद्ध में लगातार हिंसा व उथल पुथल के कारण बच्चों को बहुत गंभीर तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है, जिनमें शरणार्थी और प्रवासी बच्चे भी शामिल हैं। अप्रैल 2019 में राजधानी त्रिपोली के बाहरी इलाकों और पश्चिमी क्षेत्र में लड़ाई फिर से भड़कने के बाद हजारों बच्चों व आम लोगों के लिए परिस्थितियाँ बहुत खराब हो गई हैं। विशेष रूप में घनी आबादी वाले इलाकों पर अंधाधुंध हमले होने के कारण सैकड़ों लोगों की मौतें हुई हैं। हेनरिएटा फोर ने कहा कि यूनिसेफ को ऐसी खबरें मिली हैं कि बहुत से बच्चे अपंग हो गए हैं, बहुत से बच्चों की मौत हो गई और बहुत से बच्चों को लड़ाई में हिस्सा लेने के लिए भर्ती किया गया है। वर्ष 2011 में तत्कालीन शासक मुअम्मार गद्दाफी के सत्ता से हट जाने के बाद से ही लीबिया में गहरी अस्थिरता रही है और अर्थव्यवस्था तो लगभग ठप ही हो गई है, हालांकि देश के पास तेल के विशाल भंडार हैं। खलीफा हफ्तार के नेतृत्व वाली स्वयंभू लीबियन नेशनल आर्मी LNA के कुछ गुटों और त्रिपोली सरकार के बीच लड़ाई में हजारों लोगों की मौत हुई है। लीबियन नेशनल आर्मी विशेष रूप से देश के पूर्वी हिस्से में सक्रिय है, जबकि पश्चिमी हिस्से में स्थित त्रिपोली सरकार को संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता प्राप्त है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुटेरेश लीबिया की स्थिति पर जर्मनी में रविवार को होने वाले एक सम्मेलन में शिरकत करेंगे। इस सम्मेलन में UN द्वारा मान्यता प्राप्त लीबिया सरकार के प्रधानमंत्री फैयाज अल सराज व लीबियन नेशनल आर्मी के नेता खलीफा हफ्तार के भी शिरकत करने की संभावना है। इस सम्मेलन में लीबिया में एक स्थायी युद्ध विराम पर सहमति होने की उम्मीद जताई गई है। इस बीच पिछले 8 महीनों के दौरान कम से कम 1,50,000 लोगों को अपने घर छोड़ने को मजबूर होना पड़ा है, जिनमें लगभग 90,000 बच्चे हैं। ये सभी अब देश के भीतर ही विस्थापित हैं। 12 जनवरी 2010 को हेती में 7 की तीव्रता वाला भूकंप आया था, जिसने राजधानी पोर्ट ओ प्रिंस को दहला कर रख दिया था। हेती सरकार के आंकड़ों के अनुसार उस भूकंप में लगभग 2,20,000 लोगों की जान चली गई थी। इनमें संयुक्त राष्ट्र के 102 कर्मचारी भी थे। हेती में संयुक्त राष्ट्र मिशन के मुख्यालय वाली इमारत भी ढह जाने से इन कर्मचारियों की मौत हुई थी। सिर्फ 35 सेकंड तक चले उस भूकंप में करीब 3 लाख लोग जख्मी भी हुए और लगभग 15 लाख लोगों को बेघर होना पड़ा था। उस भूकंप में हताहत लोगों को श्रद्धांजलि देने व परिजनों और प्रभावितों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए आज यानी शुक्रवार 17 जनवरी को UN मुख्यालय में भी एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेश ने भी इस कार्यक्रम में शिरकत करके हताहतों की याद में स्थापित एक स्मरण चिन्ह का अनावरण किया। इस मौके पर महासचिव ने कहा कि हेती के लोग नया वर्ष एक नई उम्मीद के साथ शुरू कर रहे थे, लेकिन कुछ ही लम्हों के भूकंप ने उनकी उम्मीदों को धूमिल कर दिया। उन्होंने कहा कि भूकंप से हुई तबाही की खबरें जैसे जैसे यूएन मुख्यालय में पहुंची और जो सदमे व गम का माहौल बना, उसे वो कभी नहीं भूल सकते।
Today, we renew our deepest condolences to the families and friends of the victims. And our sympathy for those whose lives continue to be affected by this tragedy.
महासचिव एंटोनियो गुटेरेश कह रहे थे कि उस भूकंप के शिकार हुए लोगों, उनके परिवारों, दोस्तों और उन सभी के प्रति आज हम गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं जो आज भी अपना जीवन उस भूकंप के प्रभावों में जी रहे हैं। हम उस भूकंप में जान गंवाने वालों की विरासत के साथ प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए भी अपना संकल्प व्यक्त करते हैं। यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेश के शब्द। महासचिव ने कहा कि इसमें कोई शक नहीं कि 12 जनवरी 2010 का दिन हेती के इतिहास में एक काला दिन बनकर रह गया है, मगर हेती ने अपने लोगों के साहस, पक्के इरादे और दोस्तों की मदद के बल पर नई शुरुआत की बुनियाद रखी। रास्ते साफ किए गए, घर फिर से बनाए गए, स्कूल फिर शुरू किए गए और कारोबारों को फिर से पटरी पर लाया गया। यूएन प्रमुख ने अपने भाषण में हेती में संयुक्त राष्ट्र के प्रयासों की समीक्षा करने पर भी कुछ लम्हे खर्च किए। उन्होंने कहा कि हेती में मदद करने के यूएन के प्रयासों ने उस देश के लोगों के लिए बहुत सी परेशानियां भी पैदा की हैं। उन्होंने 2010 में फैली हैजा महामारी की तरफ भी ध्यान दिलाया, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो वहाँ तैनात किए गए शांति रक्षकों के कारण फैली थी। महासचिव ने कहा कि अनेक चुनौतियों के बीच संयुक्त राष्ट्र उस हैजा महामारी में हुए जानमाल के नुकसान पर गहरा खेद व्यक्त करता है। उन्होंने कहा कि मैं उस बीमारी का खात्मा करने के प्रयासों में हुई प्रगति का स्वागत करता हूं और हम यौन शोषण और दुराचार के लंबित मामलों को सुलझाने के लिए भी संकल्पबद्ध हैं। संयुक्त राष्ट्र के मौसम संगठन ने बुधवार को पुष्टि की है कि 2019 रिकॉर्ड पर दूसरा सबसे ज़्यादा गर्म वर्ष दर्ज किया गया है। विश्व मौसम संगठन के अनुमान के मुताबिक वर्ष 2019 में वार्षिक तापमान वृद्धि 1.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज की गई। मौसम संगठन के महासचिव पेटेरी तालस ने बुधवार को कहा कि समुद्रों की सतहों पर भी गर्मी का स्तर रिकॉर्ड पर पहुँच गया है। कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन के मौजूदा स्तर को देखते हुए हम इस सदी के अंत तक वैश्विक तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि की तरफ बढ़ रहे हैं। सिर्फ वर्ष 2016 ही साल 2019 से ज़्यादा गर्म दर्ज किया गया था। इस बारे में और ज़्यादा जानकारी के लिए दिल्ली में हमारी सहयोगी अंशु शर्मा ने बातचीत की भारत में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम में जलवायु परिवर्तन विषय पर कार्यक्रम अधिकारी सबा कलाम के साथ। सुनिए एक इंटरव्यू।
WMO की जो रिपोर्ट आई है कि 2019 में अब तक का दूसरा सबसे गर्म रहा है साल, तो इसमें क्या कहा गया और पहले से क्या अलग है?
देखिए, ये रिपोर्ट जो है ये एक लंबे टाइम फ्रेम को लेती है ऑफ कोर्स, और एक बहुत छोटे टाइम फ्रेम को भी लेती है। एक लंबा टाइम फ्रेम ये है कि ये पूरा जो डिकेड है, जो पूरे 10 साल का जो पीरियड है, ये उसका भी एक एवरेज लेती है, प्लस साल में ये भी लेती है साथ में कि इस टाइम पे जो 2019 में जो टेम्परेचर है ये प्री इंडस्ट्रियल एरा के, जो भी जब औद्योगिकरण हुआ था उसके पहले का जो रिकॉर्डेड जो टेम्परेचर है उससे कितना अलग है। इस रिपोर्ट की सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इस रिपोर्ट की टाइमिंग बहुत सही है। टाइमिंग इसलिए सही है क्योंकि अभी अभी हमारा एक काफ़ी बड़ा सम्मेलन जो हुआ स्पेन में, मैड्रिड में, जिसको हम कॉप के नाम से जानते हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, मेजर जो समझौता होना था अभी, जो 2015 में पेरिस एग्रीमेंट साइन हुआ था जिसका इम्प्लीमेंटेशन अभी 2020 से स्टार्ट होने वाला है, तो ये उम्मीद थी कि इस वाले लास्ट कॉप में जो है इसका समझौता हो जाएगा, और इसका समझौता नहीं हुआ है। और जब ये रिपोर्ट आई है WMO की, तो ये एक बहुत बड़ा अलार्म है सबके लिए कि आप एक तरफ तो समझौता नहीं कर रहे हो और दूसरी तरफ देखो पूरे पूरे अर्थ की हालत क्या होती चली जा रही है। तो ये एक अर्जेंसी भी दिखाता है कि आप जो नेक्स्ट जो कॉप होने वाला है ये ग्लासगो यूके में होने वाला है दिसंबर में, तो अगर आपने अभी भी समझौता नहीं किया तो शायद फिर इतनी देर हो चुकी होगी कि हम जो एक इंग्लिश में एक वर्ड यूज़ करते हैं पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, हम लगभग उस तक पहुँच चुके हैं। जहाँ पे हम वापस नहीं आ पाएंगे उसके बाद।
तो अभी कार्बन उत्सर्जन को लेके अभी क्या हालात हैं?
अभी हालात देखिए क्या है कि सारे देशों ने, ज़्यादातर देशों ने, मोस्टली ज़्यादातर देशों ने एक अग्रीमेंट साइन किया था, पेरिस एग्रीमेंट जो 2015 में किया था। उस पेरिस एग्रीमेंट का जो कोर था, वो कोर जो ऑब्जेक्टिव था, उस कोर ऑब्जेक्टिव में ये कहा गया था कि सारे कंट्रीज मिल करके ये कोशिश करेंगे कि टेम्परेचर जो राइज है वो 2 डिग्री से ज़्यादा नहीं हो, और ये भी कोशिश करेंगे कि हम 1.5 डिग्रीज 1.5 डिग्री तक ही रोक दें प्री इंडस्ट्रियल एरा से। लेकिन जो तमाम तरह की जितनी रिपोर्ट्स आ रही हैं, अभी एक यूनेप की भी एक रिपोर्ट आई है, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम की, जो बात कर दी है कि कितना एमिशन गैप है। अभी जो एमिशन गैप है हमारा, जो पूरे ग्लोबल अगर आप एमिशन गैप देखेंगे, तो उस केस में ये कहा गया है कि हम 3 से 5 डिग्री तक हम बढ़ने वाले हैं अगर हमने जल्द ही कुछ नहीं किया तो। तो उस पेरिस एग्रीमेंट के तहत जो है, उससे उसके तहत कंट्रीज ने अपने एक NDC गोल्स होते हैं जो दिए हैं, जो बेसिकली ये कहता है कि हर कंट्री अपनी तरफ से क्या करेगा क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए। और ये कहा जा रहा है कि जो NDC गोल्स दिए गए हैं आज के टाइम पे, वो NDC गोल्स जो है वो पर्याप्त नहीं है, वो हमें और आगे बढ़ाना पड़ेगा, उसका हमको एम्बिशन बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि अभी जितना कुछ कहा जा रहा है उससे हम क्लाइमेट चेंज को रोक नहीं पाएंगे। और अगर हम इसी गोल के साथ में चलते हैं, जो भी NDC जो सारे कंट्रीज ने सबमिट किया है, तो हम शायद देख रहे हैं 3 to 5 डिग्रीज 3 से 5 डिग्री का टेम्परेचर राइज, जो कि बहुत बड़ा डिवास्टेशन होने वाला है। शायद एक कॉमन आदमी के लिए 3 डिग्री 2 डिग्री बहुत मैटर नहीं करता है, क्योंकि हम दिल्ली में रहते हुए देखते हैं 10 डिग्री से लेकर 45 डिग्री, तो कोई भी ये सोच सकता है कि 3 डिग्री तो कुछ भी नहीं है। लेकिन 3 डिग्री में आपके जितने भी मेजर एग्रीकल्चर हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। 1 डिग्री का टेम्परेचर का बढ़ना या किसी एक साल का गर्म होना सिर्फ एक चीज़ को इफ़ेक्ट नहीं करता है, बहुत सारी चीज़ों को इफ़ेक्ट करता है। आपकी कृषि को इफ़ेक्ट करता है, आपके यहाँ जिस तरह की बीमारियाँ होती हैं उसको इफ़ेक्ट करता है, आपके यहाँ बाढ़ जैसी स्थिति बना देता है। तो शायद इसको देख करके बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जिन लोगों ने इसको अभी तक डिप्लोमेटिक इशू देखा है, उसको शायद एक एनवायरमेंटल इशू की तरह देखेंगे।
विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख ने अगले दशक के लिए पूरी दुनिया में स्वास्थ्य चुनौतियों का खाका पेश करते हुए सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं में और ज्यादा धन निवेश करने का आह्वान किया है। गौरतलब है कि आने वाले 10 वर्षों की समयावधि को UN महासभा ने कार्रवाई दशक करार दिया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस एडेनोम गैब्रियसिस ने सोमवार को जारी एक वक्तव्य में कहा कि विश्व स्वास्थ्य चुनौतियों की ये सूची इन चिंताओं के जवाब में तैयार की गई है कि वैश्विक नेता स्वास्थ्य क्षेत्र में पर्याप्त संसाधन नहीं लगा रहे हैं और लोगों के जीवन, आजीविका और अर्थव्यवस्थाओं को जोखिम में डाल रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ शिवानी काला।
टेड्रोस एडेनोम गैब्रियसिस ने स्वास्थ्य चिंताओं की तुलना शांति और सुरक्षा से करते हुए ध्यान दिलाया कि अनेक देश आतंकवादी हमलों से बचाव के लिए तो सुरक्षा तंत्र में धन निवेश करने के लिए तैयार नजर आते हैं, मगर बीमारियों के वायरसों को रोकने या उन पर काबू पाने के लिए धन निवेश करने की मंशा उनमें कम ही नजर आती है। जबकि कोई बीमारी ज्यादा जानलेवा और आर्थिक रूप से ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाली साबित हो सकती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने आने वाले दशक के लिए 13 प्राथमिकताओं की शनाख्त की है, जिनमें पूरी दुनिया में रहने वाले लोगों को प्रभावित करने वाले व्यापक मुद्दे शामिल हैं। मसलन जलवायु संकट को भी स्वास्थ्य आपदा माना गया है, जो कुपोषण और मलेरिया जैसी संक्रामक बीमारियों के फैलने की एक बड़ी वजह है। इसके अलावा वायु प्रदूषण के कारण हर वर्ष लगभग 70 लाख लोगों की मौत हो जाती है। स्वास्थ्य एजेंसी ऐसी नीतिगत विकल्प तैयार कर रही है जिनकी बदौलत सरकार को वायु प्रदूषण से होने वाली मौतों को रोकने या उनकी संख्या कम करने में कामयाबी मिल सकेगी। धनी देशों में आमतौर पर लोगों का जीवन गरीब देशों के मुकाबले 18 वर्ष ज्यादा होता है। इसके अलावा देशों के बीच भी स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़ा अंतर देखने को मिलता है, यानी कुछ देश ऐसे हैं जिनके पास बहुत संसाधन है, जबकि बहुत से ऐसे देश हैं जिनके पास अपने लोगों के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन इस असमानता को दूर करने पर काम करेगा और देशों को इस बारे में दिशा निर्देश उपलब्ध कराए जाएंगे कि स्वास्थ्य देखभाल को किस तरह से ज्यादा समान व उपलब्ध बनाया जाए।
तो आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। महबूब खान को इजाजत दीजिए। अपना और अपने आसपास सभी का खूब ख्याल रखिएगा और जैसा कि हमने पहले जिक्र किया, मल्टीमीडिया सामग्री के लिए आप हमारी वेबसाइट पर आना ना भूलें, news.un.org/hi।